प्रियल ने किसी के जरिए वो वीडियो मंगवाया और उसे सामने लगी स्क्रीन पर प्ले किया। वो वीडियो मिस्टर दत्ता के घर के लिविंग रूम का था, जहां मिस्टर दत्ता और मिस्टर जॉनसन अपनी जीत की खुशी में पार्टी कर रहे थे। निक को प्रियल के खिलाफ भड़काकर उन दोनों को अलग करने की साजिश को अंजाम दे चुके थे। मिस्टर दत्ता ने ग्लास में वाइन डालते हुए कहा, अब देखे कैसे आपका बेटा आपके पास आता है। मैंने बोला था ना, उस प्रियल को निक से दूर कर दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर जॉनसन ने वहां से एक ग्लास उठाकर कुछ घूंट पिए और बोला, हाँ हमने कहा और इसने माना भी लिया कि प्रियल की वजह से एली की जान गई है। अरे एली के मरने के बाद ही तो उसका हार्ट डोनेट किया गया था। एमा बच्ची थी इसलिए शायद भूल गई होगी। एली की डेड बॉडी ले जाते टाइम ही प्रियल की नानी के कहने पर ही तो डॉक्टर एंड्रयू उससे हार्ट डोनेशन की परमिशन लेने आए थे। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी आसानी से हमारी बात पर विश्वास कर लेगा। अब तक तो निक प्रियल को अपने घर से भी निकाल चुका होगा, दत्ता ने हंसते हुए कहा। अगर नहीं निकाला है तो भी निकाल देगा। तुम्हें पता है दत्ता, मेरा बेटा मुझ पर ना जाकर बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। बहुत ही इमोशनल है। एक बार किसी से प्यार कर लेता है तो उससे इतना जुड़ जाता है कि कोई दूसरा कभी उसकी ज़िंदगी में वो जगह नहीं ले सकता। उसकी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मुझसे प्यार करती थी तो मेरे अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन जब निक पैदा हो गया और उसे कहीं न कहीं मेरी सच्चाई का पता चलने लगा तो निक उसकी पूरी ज़िंदगी बन चुका था। फिर वो मुझे छोड़कर उसे लेकर चली गई थी। निक भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले अपनी माँ की जगह किसी को नहीं देना चाहता था, फिर एली और अब प्रियल। निक ऐसे तो कभी प्रियल को छोड़ता ही नहीं, तो मैंने एली का सहारा लिया। और अगर एली भी काम नहीं आती तो फिर हमने जो ब्लास्ट करवाए थे जिनमें एली और उसकी माँ की मौत हुई थी, उनका सारा इल्ज़ाम प्रियल पर डाल देते। तब तो शायद वो गुस्से में पागल होकर प्रियल की जान ही ले लेता, दत्ता ने हंसते हुए कहा। आपके दिमाग की भी दाद देनी होगी। किसी ने सही ही कहा है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। इसी के साथ दोनों हंस रहे थे। वीडियो वहीं ख़त्म हो गया। उस वीडियो को देखकर निक, प्रियल और परी की आंखों में आंसू थे। निक ने उस वीडियो को पहले नहीं देखा था और आज उसके सामने उसके पिता का एक नया ही चेहरा सामने आया था, जहां उसके सामने एक और सच्चाई का खुलासा हुआ कि उसके बाप ने उसकी माँ को धोखा दिया था। निक ने रोते हुए कहा, मेरा ट्रस्ट करो, मैंने आज से पहले ये वीडियो नहीं देखा था और मुझे नहीं पता ये तुम्हारे पास कैसे आया। ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया दी? मम्मा का फ़ोन तो मीता आंटी के पास था, प्रांजल ने हैरानी से पूछा। प्रियल ने कहा, शायद मम्मा ने तुम्हें फ़ोन देने से पहले वीडियो को सेंड करने के लिए टाइमर लगाया हो, या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास वीडियो लेट आया हो, लेकिन मैं अपनी मम्मा को नहीं बचा पाई, बोलते हुए प्रियल रोने लगी और निक के पास आकर कहा, उन्होंने इस इंसान के सामने मेरा सच साबित करने के लिए अपनी जान दे दी। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी और इसे मेरे साथ नहीं रहना था तो मत रहता, मेरी मम्मा को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी? अंकित ने उसे समझाते हुए कहा, प्रियल, इन सब चीज़ों में कहीं भी बीच में निक का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। इसने पहले जो भी किया उसमें इसकी गलती होगी, लेकिन प्रियंका जी ने भी जो किया था वो सही नहीं था। अगर उनके पास प्रूफ था तो उन्हें खुद की या उन लोगों की जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दी, उस समय तुम यहाँ से जा चुकी थी और एक इस वीडियो को लेकर तुमने अपने मन में जीजू को लेकर कितनी सारी गलत फहमियाँ पाल रखी हैं। आज से 5 साल पहले जो हुआ उसका आइडिया भी है तुम्हें? तुम्हारा विश्वास एक 10 मिनट के वीडियो पर टिका था, जबकि जीजू ने तो ऐसा कोई विकल्प देखा ही नहीं था। इसके बावजूद वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। तो मैं बताती हूँ कि आज से 5 साल पहले मम्मा की मौत के बाद क्या हुआ था। नहीं परी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, निक ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं जीजू, जब तक इंसान को पूरे सच का पता ना हो तब तक उसे दूसरों को जज करने का कोई हक नहीं है। दी, तुम तो हम 5 साल पहले छोड़कर चली गई थी, तुम्हें तो पता भी नहीं कि इन 5 सालों में क्या हुआ था। जिस दिन मम्मा की, बोलते हुए परी सुबकने लगी और उसके शब्द अटकने लगे। उसने जैसे तैसे अपनी भावनाओं को काबू किया और आगे कहा, मम्मा की डेथ हुई थी, उस दिन क्या हुआ था, जीजू की क्या हालत थी, तुम्हें तो वो भी नहीं पता। बस एक वीडियो देख लिया और हम सबको छोड़कर चली गई और जीजू पर इतना बड़ा इल्ज़ाम तक लगा दिया। मुझे नहीं पता 5 साल पहले क्या हुआ था या क्या नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। मेरे लिए मेरा सच यही है कि मेरी मम्मा ने मेरी सच्चाई प्रूफ करने के लिए खुद की जान दे दी और इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, वो भी बिना किसी वजह के। तुमने ये जो जज की बात कह रही हो वो पहले अपनी जीजू को समझाओ, जिन्होंने बिना सोचे समझे मुझ पर और नानी पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए थे, प्रियल ने कहा। प्रियल, तुम एक बार बिना कोई सवाल किए हमारी बात सुनोगी क्या? रॉन ने उसे शांत करवाने की कोशिश की। प्रियल ने जवाब दिया, सॉरी, लेकिन मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, मुझे जो बताना था वो मैं बता चुकी हूँ। अपनी बात कहकर प्रियल वहाँ से जाने लगी। निक उसके इस व्यवहार से बहुत गुस्सा हुआ और उसके पीछे दौड़कर गया। निक उसे खींचकर वापस हॉल में ले आया। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा, जब हम तुम्हारी बकवास इतनी देर से सुन रहे हैं तो हमारी सच्चाई भी तुम्हें सुननी पड़ेगी। फिर तुम्हें माफ़ करना है करो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी,
बोलते हुए निक की आवाज भारी हो गई और आंखें छलकने लगी। जब 5 साल तुम्हारे बिना रह सकता हूँ तो आगे की पूरी लाइफ भी तुम्हारे बिना बिता सकता हूँ। मैं ये सोच लूंगा कि तुम कभी मुझे वापस मिली ही नहीं थी। मेरे लिए नहीं, लेकिन परी के लिए तो तुम्हें सब सुनना ही पड़ेगा मिस शर्मा। परी ने उसकी बात सुनकर कहा, रहने दीजिए जीजू, इन 5 सालों में ये इतना बदल गई है कि इसे अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है। इसे बस खुद के सच से मतलब है। बाकी इन 5 सालों में कौन कितना दर्द में था, इसे तो उसका अंदाजा भी नहीं है। प्रियल, आओ बैठो मेरे पास। शिकायत सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, हम सबके पास है। हाँ, ये बात अलग है, निक को शिकायत करने का कोई हक नहीं है, लेकिन परी से तो उसका हक मत छीनो। बोलते हुए जीनी ने प्रियल को अपने पास बिठा दिया। जीनी की बात सुनकर प्रियल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उठकर परी के गले लग गई। आई एम सॉरी परी, मैं तुझे और प्रियंक को आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, मुझे गलत मत समझना, लेकिन उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, तो आज मेरी बात भी सुन लो ना दी। प्रियल ने नजर झुकाकर हाँ बोली। उसके बाद परी, रॉन, अंकित, एमा, जीनी और जैन एक एक करके उसे हर एक बात बताने लगे जो प्रियंका जी के मौत वाले दिन हुआ था या जब प्रियल घर छोड़कर चली गई थी तब क्या हालात बने थे। साथ ही उसे ये भी बताया कि ये 5 साल उन्होंने प्रियल के बिना कैसे बिताए थे। 5 साल पहले निक से बहस होने के बाद प्रियल रोते हुए ऊपर रूम में आ गई, जबकि निक बाहर रॉन, जीनी और एमा के साथ बाहर बेसुध हालत में था। प्रियल अपने कमरे में आकर जोर जोर से रो रही थी।
ये ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैंने तो इन्हें अपनी पूरी दुनिया माना था, मेरा तो कोई और है भी नहीं। मम्मा कितनी खुश थीं कि उनकी प्रियो को उसकी खुशियाँ मिल गईं। मैं किस मुँह से उनका सामना करूँगी? अगर सच में इन्होंने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया तो मैं निक के बिना कैसे जी पाऊँगी? मुझे नहीं जीना। मैं यहाँ से जाते ही नानी से मिलकर अपनी जान दे दूँगी। रोते हुए प्रियल जोर से चिल्लाई और कहा, इससे अच्छा था कि मैं बचपन में ही मर गई होती। कम से कम मुझे आज ये दर्द तो नहीं उठाना पड़ता। आप लोग कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, जानते हो ना मैं नहीं जी सकती आपके बिना। फिर क्यों? रोते हुए प्रियल बाहर आई और सीढ़ियों के पास खड़े होकर निक की तरफ देखने लगी। उससे कुछ दूरी पर हॉल में निक के पास चीनी, रॉन और एमा बैठे थे। निक जोर जोर से रो रहा था। रॉन ने कहा, तुम बताओगे उस जॉनसन ने आखिर ऐसा तुम्हें क्या कहा था जो तुमने इस तरह रिएक्ट किया? पता है, वो दत्ता ये बोल रहा था कि उसने प्रियल को धक्का नहीं दिया, उसका पैर फिसल गया था, लेकिन मैं उससे कुछ ना कहूँ इसलिए उसने मुझसे झूठ बोला, निक ने सुबकते हुए कहा। तुम कैसी बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रहा है? जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए इतनी बुरी तरह से रो रहा है, दूसरी तरफ प्रियल तेली लाइफ में है, उसे इतनी तकलीफ कैसे दे सकता है तुमने? जीनी ने गुस्से में कहा। एमा ने कहा, और एली का हार्ट उसके मरने के बाद ही ट्रांसप्लांट किया गया था निक, मुझे अच्छे से याद है। डॉक्टर ने तुम्हें झूठ बोला था कि एली की जान जा चुकी है, ये सब प्रियल की नानी ने प्रियल को बचाने के लिए किया था। तो क्या तुम्हें एली वापस चाहिए? रॉन ने पूछा। नहीं, लेकिन मेरा बच्चा, उसकी क्या गलती थी? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बोलते हुए वो जोर से रोते हुए चिल्लाया, मुझे वापस चाहिए मेरा बच्चा, वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? शायद गॉड ने उसका आना तय ही ना किया हो, बच्चे तो और भी पैदा किए जा सकते हैं, जीनी ने उसे समझाते हुए कहा। मुझे अब उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, उसे बोलो यहाँ से चली जाए, निक ने कहा। रॉन ने धीरे से कहा, जीनी, डॉक्टर दीक्षित को कॉल करो। एमा, तुम प्रियल को देखो, मुझे उसकी हालत ठीक नहीं लग रही, बोलते हुए उसकी नज़र प्रियल पर पड़ी जो कि सीढ़ियों में गुमसुम सी बैठी थी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, निक ने रोते हुए जोर से फिर चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर प्रियल उसके पास गई और रोते हुए कहा, मैंने भी अपना बच्चा खोया है, कौन से बच्चे का गम मना रहे हो आप? आपको तो पता भी नहीं था, जबकि मैंने तो उसके साथ 4 महीने बिताए थे, निक ने उससे नज़रें चुराते हुए कहा। फिर भी ख्याल नहीं रख पाई, एक बार तो सोच लेती मेरे या उसके बारे में उनके घर पर जाने से पहले। तुमने अपना बच्चा खोया था तो मैं था तुम्हें संभालने वाला, लेकिन मेरे लिए कभी कोई नहीं होता। मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे घर वालों की साजिशों से। पता है, प्रियंका जी ने मुझे बोला था कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए सब कुछ भूलकर, और मैं सब भुलाने को तैयार बैठा था। एक बार बोलते तो सही, उन्होंने मुझसे मेरी ज़िंदगी की वो खुशी छीन ली जिसका हमेशा से मैंने सपना देखा था। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, आप अपने होश में नहीं हो, संभालिए खुद को, प्रियल ने निक को पकड़कर कहा। आप चिल्लाए मेरे साथ? निक ने उसे दूर धकेला और बोला, चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ दे ही सकती हो तो मुझे मेरा बच्चा लाकर दे दो, जिसके पैदा होने से पहले ही तुम्हारे जीजू ने मार डाला। रॉन ने कहा, प्रियल, तुम एक बार इससे कुछ भी बात मत करो, ये बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है,
मैं जानता हूँ ना इसे, तुम जाओ एक बार रूम में। निक प्लीज तुम बिल्कुल पैनिक मत हो, प्रियल ने रोते हुए कहा। क्या इन्हें ये भी होश नहीं है कि ये मुझसे प्यार करते हैं? कभी इन्हें बच्चा चाहिए था तो कभी एली। क्या मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी लाइफ में? प्रियल अपनी बात कहकर अंदर जाने के बजाय बिना किसी से कुछ बोले घर छोड़कर चली गई। रॉन और जीनी अभी भी निक को संभाल रहे थे, जो कि रोते रोते बेहोश हो गया था।